द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज वन में गए, एक महीने तक ध्रुव जी महाराज तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदरासन, तीन रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और तीन रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा करके भजन कर रहे हैं। एक महीना पूरा हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि अभी तक भगवान दर्शन देने नहीं आए। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने नियम को बदल दिया और अब ध्रुव जी छह दिन तक कुछ नहीं खाते और छह दिन बाद केवल जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। दो महीने तीन महीने व्यतीत हो गए, ध्रुव जी महाराज को अभी भी भगवत दर्शन नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, केवल 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते हैं और फिर 12 दिन तक श्वास नहीं लेते। ध्रुव जी की इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझिएगा। ध्रुव जी महाराज खाना छोड़ रहे हैं, पानी पीना छोड़ रहे हैं, श्वास लेना भी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भक्त को चाहिए कि भगवत दर्शन करने के लिए उसको जिस प्रकार माता पिता से कोई अपना काम बनवाना हो तो बालक जो बिखर जाता है, जिद्दी हो जाता है कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे ही भक्त यदि भगवत दर्शन के लिए ध्रुव जी की तरह जिद्दी हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। छह महीने तक ध्रुव जी महाराज ने अब 12 दिन तक कुछ नहीं खाते ना पीते, बस श्वास को अपने अंदर रोक करके भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे ही पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया और अब जो 12 दिन में श्वास ले रहे थे उसको भी एक बार लेकर के अब महीने भर तक श्वास ही नहीं ले रहे हैं। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान ने भगवान से जाके प्रार्थना की कि प्रभु जाकर के इस बालक को दर्शन दो। भगवान कहने लगे ऐसे बालक को दर्शन देने नहीं, ऐसे बालक का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। भगवान गरुण पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।
भगवान पधार रहे हैं, हम सबको भी दर्शन है जाए, ऐसे नहीं भाव से भुजा उठा के गाओ श्रीमन नारायण नारायण महाराज ने 5 महीने तक भगवान का खूब दिव्य तप किया। जैसा कि मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, बहुत सावधानी से सुने इस बात को, ध्रुव जी की भक्ति मनुष्य को एक भाव सिखाती है कि जिस प्रकार बालक अपने किसी भी बात को मनवाने के लिए जिद्दी हो जाता है भगवान के, अपने माता पिता के सामने, ऐसे भक्त के भीतर भी भक्ति में जिद आ जाए कि मुझे आपका दर्शन करना ही है, चाहे कैसे भी दो, तब भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी दोनों नेत्र बंद करके, भुजाएं जोड़ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं और सामने गरुण जी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान विराजमान है। अनंत समय व्यतीत हो गया, भगवान का दर्शन ध्रुव जी नेत्र खोल के नहीं कर रहे। भगवान मन में विचार करने लगे, हम इतनी देर से खड़े हैं, ये देख ही नहीं रहा है। तुरंत भगवान ने अपनी भुजा बढ़ा करके जैसे चुटकी बजाई तो हृदय में जो स्वरूप ध्रुव जी को दिख रहा था, वो स्वरूप हृदय से अंतर ध्यान हुआ। उस स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी के व्याकुलता ने ध्रुव जी के नेत्रों को खोला है तो सामने गरुण पर चतुर्भुज रूपधारी नारायण भगवान विराजमान। 5 महीने की इस तपस्या के बाद आज भगवत दर्शन हुआ है श्री ध्रुव जी को। ध्रुव जी दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि अभी बालक हैं, भगवान के सामने क्या स्तुति गाएं है। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया है, जैसे ही शंख का स्पर्श पाया है ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं स्तुति में, कियोंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्मधाम अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु अब देखो, एक संसार का भक्त है और एक भगवान का ध्रुव है। हम लोग हनुमान जी के ऊपर छत्र भी यदि चढ़ा दें तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देंगे, सोने का छत्र चढ़ाया है महाराज हमने, हमने ठाकुर जी को ये दिया वो दिया, और तो और वो 2000 की नोट भी कोई मंदिर में चढ़ाता है तो ऐसे 4 बार ठाकुर जी की न्योछावर करता है। वो न्योछावर किसी वेद वेदांत में लिखा नहीं करना चाहिए, पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट है, हम इसलिए ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऊपर नीचे। हम कितना दिखावा करते हैं भक्ति में, और यहाँ ध्रुव जी को देखो, आज ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट किया उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, प्रभु आप प्रकट अपनी ही कृपा से हुए हो, मैंने कुछ नहीं किया। यदि मैं इस बात का अहंकार करूं कि मैंने अपनी वाणी से आपकी स्तुति गाई तो वाणी को बोलने की सामर्थ्य आपने प्रदान की है, मैंने अपने हाथों से करताल बजा के आपको प्रकट किया तो इन हाथों में शक्ति आपने प्रदान की है, पैरों से प्रदक्षिणा करके आपको प्रसन्न किया तो पैरों में प्रदक्षिणा की शक्ति भी प्रभु आपने प्रदान की है। हे प्रभु हमारे शरीर को यहाँ तक कि जीवित रहने की सामर्थ्य भी आप ही प्रदान करते हैं। मैं अपने प्रत्येक अंग से आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझको ये अंग प्रदान किए। हम लोग कभी भगवान को धन्यवाद ज्ञापन नहीं करते। आज मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत, कोई मुझको ला करके दे दे तो मैं उसको बार बार धन्यवाद कहूंगा। लेकिन इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव पाने के लिए हमें 10 इंद्रियां प्रदान की भगवान ने, कभी धन्यवाद कहते हैं उनको? अपने नेत्रों से दर्शन करके नेत्रों से धन्यवाद दो कि प्रभु आपने ये नेत्र दिए, इससे पूरे जग को देखता हूं, आज आपको देख करके इन नेत्रों से धन्यवाद कर रहा हूं। अपनी वाणी से कीर्तन गा करके भगवान को धन्यवाद कहो, प्रभु इस वाणी से पूरे विश्व को मोहित करता हूं, लेकिन आज आपके सामने 2 शब्द गा करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं। अपने पैरों से प्रदक्षिणा करते हुए भगवान को धन्यवाद कहो, पूरे विश्व में इन पैरों से जाता हूं, आज आपकी परिक्रमा लगा करके मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी कुछ मांग लो, और ध्रुव जी ने जो मांगा है बहुत सुंदर, कि भक्ति मुह प्रभता त्वयि मे प्रसंगो भूया अनंत महता सौलवरमुरु व्यसनं भवाभिं निश्चे भवत् गुण कथा भाव से यदि इस बात को सुनोगे तो अत्यंत श्रेष्ठ बात है ध्रुव जी की। क्या कह रहे हैं? प्रभु आज आपसे मांगने का अवसर मिला है तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही वस्तु मांगता हूं। बोले क्या? बोले आप मुझसे दूर चले जाओ। भगवान बोले वाह, हम दूर चले जाएं? और फिर बोले आपकी कथा मेरे जीवन में बस जाए, लेकिन आप मुझसे दूर हो जाओ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी ने सीधी बात ऐसे नहीं कही है, लेकिन मैं उस भाव को कह रहा हूं कि ध्रुव जी कहना चाह रहे हैं, प्रभु आप मुझे मिल जाओगे तो अति सामीप्य में दोष होता है। आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कल भी सुंदर लगोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये मेरी कमी है, आपकी कमी नहीं है, एक दिन मेरे नेत्रों को आपको देखने में सुख नहीं मिलेगा, और वो मैं कभी होने नहीं देना चाहता कि कभी आप मेरे सामने आ जाओ और आपको देख करके मैं बस एक क्षण देख करके किसी और को देखने लग जाऊं। मैं आपकी कथा के इस, यहां पर तो वर्णन किया गया है कि ये व्यसन मेरे जीवन में आ जाए, कथा रूपी व्यसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका स्वरूप नहीं होता, लेकिन फिर भी वक्ता के मुख से गाई गई कथा के द्वारा आप रोम रोम में विद्यमान हो जाते हो। मैं आपकी कथा चाहता हूँ। संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में प्रियतम सर्वदा होता है, हर स्थान पर विराजमान होता है। हे प्रभु आप मिल जाओगे तो कहीं आप में दोष उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, आपकी कथा गाने वाले वक्ताओं में मेरी रति हो जाए और उनके मुख से निकलने वाली आपकी सुंदर कथा के सुंदर व्यसन को मैं अपने जीवन में पान करता रहूं, बस यही कृपा कर दो। एक भक्त कथा में बैठा था, चैतन्य महाप्रभु कथा सुना रहे थे, कथा सुन सुन करके भक्त इतना भाव विहोर हो रहा था, बार बार भुजाएं उठा करके हे केशव, हे माधव, हे राघव, हे मधुसूदन कह करके रुदन कर रहा था। भगवान बोले कितना भाव विहोर हो रहा है, चलो इसको दर्शन दे देते हैं। अब वो तो रुदन कर रहा था कथा सुन करके, इतने में ही पीछे से उसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। जैसे ही हाथ महसूस हुआ, पीछे मुड़ करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान अपने सुदर्शन चक्र आदि लेकर के पीछे खड़े थे उसको दर्शन देने। आज्ञा करें प्रभु। बोले अरे तुम बहुत रो रहे थे ना हमारे दर्शन के लिए, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा चलो जाके दर्शन दे देते हैं, हम तुमको दर्शन देने आए हैं। भक्त बोला और कुछ? नहीं और कुछ तो नहीं। तो बोले अच्छा एक काम करो, अभी 2 घंटे की कथा रह गई है, आप बाहर जाके इंतजार करो, मैं कथा सुन के आता हूँ। ये है प्रेमी भक्त का लक्षण। वो कहता है कि प्रभु आपका दर्शन तो फिर भी क्षणिक सुख देगा, लेकिन आपकी कथा तो निरंतर जीवन को सुख प्रदान करती है। मुझे आपके दर्शन से भी श्रेष्ठ आपकी कथा में मेरी रति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की कथा मांगी। ऐसे ध्रुव जी के सुंदर प्रसंग को यहाँ बताया गया। आज हम सबका परम सौभाग्य आज कथा में अनंत व्यासों के प्रेरणा के स्रोत और अनंत श्रोताओं को भगवत दर्शन भागवत अनुभव कराने वाले और इस दास के पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज पधारे हैं, आप सब नौझील वासियों की तरफ से पूज्य पिताजी और माताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा का ये नियम है, प्रसंग के मध्य में विशिष्ट महान विभूति भी पधारें तो पहले प्रसंग पूरा करें तब उनको सम्मान दें। और ये नियम हमको पिताजी ने ही सिखाया है और ये नियम भागवत जी का साक्षात्कार कराने का नियम है। आज आप कथा में पधारे, मैं चाहता उसी समय वाणी से आपका वंदन करता, लेकिन उस समय तो ध्रुव जी महाराज खड़े हैं दर्शन करने के लिए। तो पहले ध्रुव जी को ठाकुर जी का दर्शन करवाया, ठाकुर जी की स्तुति गवा दी, दोनों भक्त भगवान का मिलन हो गया, उसके बाद विशिष्ट अतिथि का स्वागत। ये कथा के नियम है। हमारे पूज्य पिताजी ने कथा में मर्यादा को बहुत प्रधानता दी है कि मर्यादा से कथा होनी चाहिए। कथा में श्लोक जितने ज्यादा से ज्यादा हों उसकी श्रेष्ठता देखी जाए, भजन कम हो श्लोक ज्यादा कथा ज्यादा, और ये भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो आज आप कथा में पधारे हैं, मुझे पता है सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब बड़े उत्सुक थे कि कब ठाकुर जी महाराज कथा में आएंगे। पाठक जी तो रोज याद कर रहे हैं, रात में सोए भी नहीं ऐसा बता रहे थे कि कल ठाकुर जी आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो आज आप पधारे हैं कृपा करने के लिए, आपकी वाणी सुन करके भी हम लोग प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे। झाड़ी वाले हनुमान जी ने बड़ी कृपा की, पहले तो पिताजी से सेवा करवाई, अब हमसे सेवा करवा रहे हैं अपनी। ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना, ये सेवा निरंतर करवाते ही रहें। और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, मेरे तो मुख्य श्रोता भी श्री हनुमान जी हैं, झाड़ी वाले हनुमान जी ही हैं। तो जिनकी कृपा से ये गद्दी प्राप्त है, जिनकी कृपा से ये वाणी प्राप्त है, जिनकी कृपा से ये देह प्राप्त है, ऐसे माता पिता दोनों कथा में पधारे हैं, दोनों को बारंबार प्रणाम।